November 4th, 2006, Kartik, evening class.
Mantha kalpatarubhyasya Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Sayati Krishna Namne Gaura Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Krishna Krishna Tadavaktaya Anga Shyamalim Chata Viramito Mandi Krishna Vivaram Jatam Yam Tavosham Vidasham Vattam Vindaranya Nivarsinam Hridila Satkama Viramo Daram Radha Skanda Niveshita Jalapujam Jayindam श्री गुरु गौरांग धार्मिका जी भाई जी की कृपा से आज प्राय 28 दिन परिक्रमा स्वस्थ रूप से विघ्न रूप से हुई। आज भी खदीर वन कोकिल वन जावट पैठान चरण पहाड़ी कोट वन आज नौ की इत्यादि स्थानों को होकर के यात्रा सकुशल लौटी। आज इस कार्तिक महीने में के शुभ दिन में आज के दिन प्रपूज्य चरण नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी का तिरुभाव तिथि है। आज ही के दिन वो भगवान के नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। लंबी भगवान ने आयु दी थी, करीब 102-103 वर्ष तक की लंबी आयु थी। उपाध के गणों में उनकी सबसे लंबी आयु थी। परम वैष्णव थे, 1946 ईस्वी में त्रिदंड कटवा में ग्रहण कर लिया। कहाँ लिया उन्होंने दंड लिया? पहले उनका नाम प्रणवानंद ब्रह्मचारी था, अच्छे ब्राह्मण फैमिली के थे। प्रभुपाद की हरी कथा सुन करके घर बार छोड़ करके चले आए। बड़े सुंदर लेखक थे। पहले अमृत बाजार पत्रिका या किसमें संपादन का कार्य लेखन का कार्य करते थे। प्रभुपाद जी के चरणाश्रित हुए तो उनको उन्होंने नदिया प्रकाश और मासिक गौड़ीय में उनको एडिटर बना करके उनको रख दिया। प्रभुपाद के अपहरण के बाद में उन्होंने भी गोडिया मठ छोड़ दिया और गुरु महाराज जी के साथ में कुछ दिनों तक थे। चुचुड़ा में आए संन्यास लेने के बाद में उनका नाम हुआ भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज। जब आए तो गुरु महाराज जी ने उनका सेवा का भार, खाने पीने इत्यादि का, रहने की व्यवस्था सब हमारे ऊपर में दे दी। तो मैं उनकी गुरु जी की सेवा करते हुए भी उनकी भी सेवा करता था। जब वो स्नान करने जाते निकट में गंगा रहने पर जरूर जाते, जमुना रहने पर जमुना में स्नान, समुद्र में रहने पर समुद्र में स्नान, तो हमारे साथ में मैं उनको लेकर के जाता। हमारे पूर्वाश्रम का एक लोटा था तो मैं भी उसको लेकर के गया स्नान करने के चुचुड़ों में, और पानी पड़ा, ज्वारभाटा का पानी चुचुड़ा तक आता है वो पड़ा, हमको मालूम नहीं, वो लेकर के लोटा चला गया। फिर पूरी महाराज जी को स्नान करा करके लौटा, सोचा अच्छा हुआ पूर्वाश्रम का एक स्मृति था कि दिन खत्म हो गया, वो चला गया। तो उनकी खाने पीने की देखने की सारी व्यवस्था करता था। कुछ दिनों के बाद में फिर वो पूज्य पाद माधव महाराज जी के साथ में ब्रजमंडल की परिक्रमा करने लगे, और उनकी पत्रिका के, क्या नाम है उनकी पत्रिका, चैतन्य वाणी, उसका एडिटर बना दिया। अधिकांश लेख लेखन का जो वही उनके ग्रंथों का प्रकाशन का भार वही लेकर के सब करते थे। अंत में उन्होंने अपना कालना में एक आश्रम बनाया, और फिर इसके बाद में कुछ दिनों के बाद में पुरी धाम में और एक जगन्नाथपुरी में एक मायापुर में उन्होंने आश्रम बनाया। वृंदावन में भी पीछे से उनके अप्रकट के बाद में से रहते हुए ही यहाँ पर हुआ। परम वैष्णव थे, बोलते थे तो आंख बंद करके बोलते थे, आंख खोलते नहीं थे, बोलते हुए चले जाएंगे, देखेंगे कोई है कि नहीं है, कुछ नहीं थे, बोलते जाते, और हो सकता है सब लोग उठ करके चले गए हो तब भी वो नहीं थे, पानी रुकती नहीं। सभी लोग उनको सम्मान देते थे, सभी मतों हमारे गुरु जी को बड़े भाई कहते थे, विनोद दा। संन्यास गुरु महाराज लेने के बाद भी सब गौड़ियों मठों के जितने संन्यासी ब्रह्मचारी विनोद दा, विनोद दा। हमारा परम सौभाग्य हुआ कि मैं उनकी सेवा भी की और उनकी हरिकथा भी प्राय सुनने को मिलती थी। और उन्होंने कहा था कि हिंदी में पुस्तक प्रकाश करते हैं तो हमको बहुत आनंद होता है, इसलिए अपनी सारी पुस्तकें जो प्रकाशित हो वो जरूर हमको, तो मैं ले जाता था जो जो पुस्तक होती थी और उसको बड़े प्रेम से सीट पर रख करके मुझे आशीर्वाद दे। अंतिम समय में पूरी में जब थे, जबकि बोल चाल बंद थी, उस समय मैं उनके दर्शन के लिए पुरी में गया, तो मैंने कहा कि मैं आपका दास नारायण महाराज आया हूँ गौड़ीय वेदांत समिति से। सुन करके उन्होंने आँख खोल दिया और सेवकों कहा कि बैठाओ बैठाओ और हमारी सीट के ऊपर में तुम बहुत सेवा भी करो। मैं बहुत खुश हूँ। और उन दिनों के बाद मैं सुना जो पूरी में ही अंतर ध्यान मिला, आज उनके चरणों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति है। वे जहां भी रहे हम सब लोगों के ऊपर भी कृपा करें। गौर प्रभानंद गौड़ियों मठों में विग्रह प्रतिष्ठा वही करते थे वो, और सौती महाराज पूज्यपाद सौती महाराज, हमने सौती महाराज से सब लिया और उनका भी चक्र प्रतिष्ठा इत्यादि कुछ लिया लेकर के। अब हमारे पंथित महाराज जी सब सीखे सीख लिए हैं, अब ये करते हैं और मैं सब नहीं कर पाता। गौ प्रमाण
गुरुवे गौण चतुर्वालिकाय ध्याये कृष्णाय कृष्णवर्ताय तदवर्ताय नमो नमः। Today we went on many places on our Brajmano Parikram. And today we should also know as the disappearance day of Nityalila Parist, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Of all the associates of Jagadguru, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he had the longest lifespan of more than 102 years. And on this day, in Kartik month, he entered the Nityalila of Radhan Krishna, Guru and Gauranga. He came from a very high class of Brahmin family. His name was Paramananda Prabhu. And, Pranavananda. And hearing the Hari Katha of Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he became so attracted, he left everything and took shelter at the feet of his Gurudev. He was most expert in writing. Srila Prabhupada gave him the order, your pen should never stop. Therefore, he was in charge of the editing of the world's first daily spiritual newspaper, the Nadia Prakash, as well as the monthly Gaudiya magazine from the Gaudiya Mutt. After the disappearance of Srila Prabhupada, he also left the Gaudiya Mutt and he came to Chinchura, the first month of the Gaudiya Mutt Samiti, without Param Guruji. Gurudev says, at that time, even though I was serving my Gurudev put me in charge of his accommodation, his prasad. Therefore, I got so much chance for his association and service. Therefore, if Maharaj lived anywhere near the Ganga, he must take bath there. If he lived anywhere near the Yamuna, he would take bath there also. If he lived near the ocean, he would take bath there. Therefore, Gurudev is saying that when he left his previous ashram, he had one lota, one drinking cup. He used to take that with him for bathing also. So there in Chinchura, there is some tidal influence. So Guru Maharaj put his lota there on the bank, and he had no idea when he came back from the bath that the tide had taken away the lota. Then Srila Purimaj was laughing, oh, the Ganga has taken away your last attachment, your remembrance of your previous ashram. Therefore, after some day, he stayed 6 months in Chinchura. After that, he went and served Pujapad Bhakti Daita Madhav Maharaj. And then he was also put in as the editor of Chaitanya Vani, their monthly magazine. Therefore, in his last, he established ashrams in Ambika Kalna, Mayapur, Vrindavan, and Jagannath Puri. When he would speak Hari Katha, he would speak with his eyes completely closed. He had no desire for name and fame. Therefore, if anyone was listening or if everybody left, he had no attention, no care. He used to call our Param Guruji Vinoda, which is like big brother. The Guruji said, I'm very lucky that I served him and I heard his Hari Katha. Especially when Srila Puri Maharaj was in his last pastimes, he was not communicating with the external world. But when Gurudev went there, then he said, who are you? He said, I am your servant, Narayan Maharaj, from Gaudiya Mutt Samiti. That time, he placed his hands on the head of Gurudev and blessed. He was very happy, especially when he knew that all the books of the Goswamis were coming out in Hindi. Then we said, if any of you print any books, you please give to me. And when Gurudev would give to him, he would keep them on his head with great reverence and very much affection. He was also most expert in Seva Puja, and him and Pujapad Shroti Maharaj were responsible for establishing all the Vigrahas in the Gaudiya Mutts. Even Rupsanatha Gaudiya Mutt was done Pran Pratishtha by him. So we pray that wherever he is, he may bless all of us with pure devotion. Nityalila Parist Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj Ki.
पर माधव प्रिय प्रभु कृष्ण प्रभु को कहा जहां भी हो कृपया इधर पधारे। श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु एवं कृष्ण कृपा प्रभु आप जहां भी छिपे हुए हैं कृपया इधर प्रकट हो जाएं।
Thank you.
মাধুর্যকার মন্দির। গম্ভীর বিষয় পার এখন গম্ভীর বিষয় চার প্রকার কে আনন্দ তথা উসকা বিবরণ অনাথ চার প্রকার কে হ্যাঁ দুষ্কৃতি উত্থক সুকৃতি উত্থক অপরাধ উত্থক ভক্তি দুর্নিবিবেশ দুরভিনিবেশ রাগদ্বেষ রাগাদি প্রমুক্ত পাঁচ প্রকার কে ক্লেশ কি দুষ্কৃতি উত্থক जन्म में किए हुए कर्मों के फल से दुखजनक विषयों में अभिनिवेश होना द्वेष राग विद्या अस्मिता ये पांच प्रकार के क्लेश हैं। द्वितीय दृष्टि में वर्णन किया जा चुका है ऐसे दुष्कृति उत्थर ऐसे दुष्कृतों से पूर्व जन्मों के दुष्कृतियों से पाप कर्मों से होने वाले अनर्थों को दुष्कृति उत्थ अनर्थ कहते हैं। सारांश यह है अनादिकाल अविद्या ग्रस्त कृष्ण वैर्मुख जीवों की दुर्वासना के फल से देह और दैहिक में मैं और मेरा यह जड़ी अभिमान होकर भोग वस्तुओं के प्रति राग या प्रीति और तीतापादी दुखों के प्रति द्वेष होता है और उसके फलस्वरूप देह दैहिक वस्तुओं में प्रचंड अभिनिवेश का प्रबल संस्कार जीवों के हृदय में मौजूद है। भजन के समय वही संस्कार श्रवण कीर्तन इत्यादि में बाधा देते हैं। जब दुख आएंगे बीमारी हो गई कोई कभी कुछ हुआ तो मन नहीं भजन में जाता उस समय हरिनाम भी नहीं होता तब हरिदास ठाकुर आदि जैसे महात्माओं के लिए नहीं साधक साधारण कोटि के हैं जहां बीमार हुए भजन बंद हो। हमने देखा था पूज्यपाद मधुसूदन महाराज जी बीमार हो जाते तो जितना शरणागति कल्याण कल तरु और जितने श्लोक सब कीर्तन श्लोक पाठ करते जब तक बुखार उतर नहीं जाता तब तक ऐसे ही करते एक घंटा दो घंटा चार घंटा पांच घंटा दस घंटा बस कीर्तन कर रहे जितना बुखार तेज होगा उतना ही सुकृति अर्थ सुकृति से उत्पन्न अनर्थ पूर्व पूर्व जिए हुए जन्मों में किए हुए सत्कर्म और सकाम पुण्य कर्मों के फल से अनित्य स्वर्ग आदि लोगों के सुख भोगों की जो कामनाएं हैं उनको सुकृति उत्थान अर्थ कहते हैं। साधक भजन साधन भक्त के भजन के समय पूर्व पूर्व जन्मों के संस्कार वशतः भोग की कामनाएं हृदय में उत्पन्न होती हैं यह सुकृति जात अनर्थ है मुक्ति की कामना भी इसी के अंतर्गत है। भक्ति और मुक्ति की कामना हृदय में रहने से भजन का आस्वादन कदापि संभव नहीं किसी भोग की लालसा है मुक्ति की लालसा है कभी भी भजन रस का भजन रस उसे नहीं मिलेगा। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत हृदि पिशाची हृदि वर्तते तावत भक्ति सुख शास्त्र कथम अद्भुत भक्ति और मुक्ति की कामना की पिशाची जब तक हृदय में विद्यमान है तब तक सुखम अनुभक्ति वृत्ति हृदय में कैसे आए। और अपराध मुक्त, अपराध से जो अनर्थ होते हैं उन्हें अपराध मुक्त करते हैं। ये अपराध पापों से भी अधिक भयंकर होते हैं, और वो यदि अपराध धाम में हो तो वज्रणीत हो जाते हैं। ये भजन में विशेष करके बाधक है, कहते हैं कि एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेम कारण भक्ति करण प्रकाश। एक नाम भी जाति हृदय में शुद्ध नाम अनुभूत हो जाए तो हृदय में भक्ति का प्रकाश हो। प्रेमेर उदय है, प्रेमेर विकार, श्वेत कम पुलक आदि गदगद अनुयास भय, संसार नष्ट हो जाता है और कृष्ण की प्रेममयी सेवा, आनंदमयी सेवा उसे प्राप्त हो जाए। भाई एक कृष्ण नाम का इतना फल है, एक कृष्ण नाम फलो पाई एतो धन, हेन कृष्ण नाम यदि लाए बहु बार। किंतु हम लोग जैसे बहुत बार कृष्ण नाम लेते हैं कभी प्रेम नहीं आता, आंखों में अश्रु धारा नहीं आता, समझो तबे जानिए अपराध कहां के प्रचूर कृष्ण नाम बीजित है। समझ लो पूर्व जन्मों के अपराध। इसलिए अभिशांत नाम वो भी रो रो कर नाम प्रभु से प्रार्थना करते हुए अभिशांत नाम करें तो बहुत खुश होते, अन्यथा नहीं। और जो हमने तो कोई अपराध नहीं किया, न कर रहे हैं, किंतु पूर्व जन्म का भी और श्रेष्ठ है भाई, नहीं तो प्रेम जरूर होता, नाम में इतनी शक्ति है, तो नहीं हो रहा है जरूर है। ट्रांसलेशन, पूर्व जन्म का जरूर अपराध है, इस जन्म में नहीं हो रहा है किंतु इसीलिए भी प्रेम नहीं हो रहा है, प्रेम के जो विकार है हर्ष रोमांच कंप अश्रु ये भी नहीं हो रहा, तब समझो जरूर है।
As we return to Madhurya Kalambini, then a very deep subject comes up describing four types of anatta, apparatus, four kinds of anatta. Duskriti uta anatta, sukriti uta anatta, aparat uta anatta, and bhakti uta anatta. Duskriti uta anatta means obstacles arising from one's past life or this life bad activity. The jivatma, because of his rejection of the service of Krishna, is rotating in this ocean of birth and death, tasting the results of his previous activities. Therefore, he suffers from five types of avidya or ignorance, which are rag, attachment, dvesh, abhinavesh, vismiti, and avidya, asmita. Five types of ignorance. Rag means attachment. Means the living entity becomes absorbed in thoughts of I and mine and becomes absorbed. The living entity becomes absorbed in thoughts of I and mine. This is rag. Dvesh means when suffering comes, one feels repulsion to that suffering. Vismita means forgetfulness. Abhinaveshita means absorption in that which is false. And avidya asmita, absorption in ignorance. Therefore, as a result of his previous bad activities, the living entity suffers these five types of klesh or difficulty. This is called duskriti uta anatta. For example, we are not concerned here with Mahabhagavat, but with ordinary sadhak, as a result of one's past activity, one may suffer some unhappiness or some disease. This creates an obstacle in a Hari Bhajan. But this is not so for Mahabhagavat, like Sri Haridas Thakur, or like Bhakti Kamal Madhusudan Maharaj. We saw that whenever he had some disease, then what would he do? He would not lie down sick. He would take bhakti vinods, kirtans, saranagati, other kirtans. And as long as he was sick, as long as he had a fever, he would very loudly chant those astakams for 1 hour, 2 hours, 5 hours, 10 hours. Therefore, disease is not an obstacle for the bhajan of a Mahabhagavan like that. Shukriti Uta Unata. As a result of one's previous good activities, then one gets a result which results in material happiness and facility for enjoyment. This is a result of one's past life activities. This also leads to a desire for liberation. Therefore, when material desires arise in the heart, we should understand this is a result of our Sukriti Uta Onata, our past materially good activities. Anitya Sukriti. Sri Rupa Goswami has said, Bhukti Mukti Spriha Yavat Pisachi Vidivatate Tavat Bhakti Sukhasam Katam Udo Vayobhavet. As long as the heart is haunted by the witch of desire for material enjoyment and liberation, then the happiness of pure devotion cannot be experienced. That time, as long as we have desire for material enjoyment, we cannot taste the ras emanating from the holy name. The third type of anatta is called aparad uta anatta. Aparad or offense is worse than sinful activity because when performed habitually, then it makes the heart harder than a thunderbolt. Therefore, we hear descriptions of the glories of Krishna's name. Eka Krishna Nam Kori Shava Paparnash. Only by the external result of chanting one time the name of Krishna is that all sins are completely destroyed, and it also causes the arousal of prem. And on the body of that sadhak we will see symptoms of ecstasy like the tears flowing from the eyes, the hair standing on end, and the voice being choked. But we are chanting so much Harinam, but still prem is not arising. Therefore, we should understand this is a result of our offenses committed in this life. Then one may say, well, I'm not committing any aparad. Then we should understand it is due to offenses committed in previous life. Therefore, what should we do? We should simply weep and repent and pray to the name that he will free us from these things, these obstacles.
अपराध माने क्या अप राग अप अपगत दूर हो गया है राग माने प्रसन्नता भक्ति देवी की राधा कृष्ण की उपासना जिसे हमारी कृष्ण की सेवा भजन नष्ट हो जाए वो अपराध इसलिए इस जन्म में हम देखते हैं कि हमारा कोई अपराध नहीं है हम अपराध भी नहीं कर रहे हैं किंतु हरिनाम करते समय में चित्त द्रवित नहीं होता अस्वास्थिक विकार नहीं आते तो समझना है कि पूर्व जन्मों का अपराध का ये फल है चाहे वो ज्ञात रूप से किया है या अज्ञात उसको अनुताप करते हुए और उसे वैष्णव से प्रार्थना करना चाहिए हरिनाम से प्रार्थना करनी चाहिए हमारा अपराध दूर हो और शुद्ध कृष्ण नाम हमारे हृदय में मनुष्य जीवन अर्थक तो है किंतु कब चला जाएगा कोई ठीक नहीं इसी बीच में सब सारी कामनाओं को छोड़कर जिस प्रकार से हमने माधुर्य कादंबनी की व्याख्या में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है ऐसा जीवन बनाओ सारी कामनाओं को हृदय से निकालो जो कुछ हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से उपस्थित होता है उसे जीवन निर्वाह करो अधिक की चेष्टा मत करो भगवान का भजन करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य हो सके तो निजे गुरु तक हैया तारो यही देश महाप्रभु के उपदेश के अनुसार में अपने पहले जीवन को सार्थक करो, भजन करो, उसे उपलब्धि हुई तो दूसरों को भी मदद करो, दूसरों को भी शिक्षा दो जिससे कि वो भजन कर सके। बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए गए हैं। बहुत शक्तिशाली राक्षसस्थलियों में आप लोग गए हैं, वहां की विद्यवती कथाएं भी सुनी है, इसलिए बहुत कुछ सुजोग है जो इस जन्म में ही वैसा भजन कर और जीवन को सार्थक बनाए। कल हम लोगों का उज्जवरत नियम सेवा समाप्त होगा, तो इसका मतलब नहीं है कि अब सब कुछ बंद हो गया। ये तो एक चाबी दी गई, दामोदरष्टक सब समय पाठ कर सकते हैं, और जो नियम हम लोगों ने बतलाया है, जो कीर्तन इत्यादि करते हैं, उन कीर्तनों में भी राधा कृपा कटाक्ष नंदनाष्टक और जो करते हैं उसको आप लोग करेंगे, उसको छोड़ेंगे मत। और कल जिन चीजों का हम लोगों ने चतुर्मास्य में और कार्तिक व्रत में प्रत्याग किया था, जिन वस्तुओं को, भोजन सामग्रियों को, वो कल से ठाकुर जी को भोग दे करके पुनः और सब चीजें ग्रहण की जाएगी। पहले ठाकुर जी को भोग, वैष्णवों को निवेदन करो, वैष्णवों को खिला पिला करके और तब अपना व्रत समापन करो। कात्यायनी व्रत कल से आरंभ होगा, एक महीना, तो जो करना चाहे वो अपने कात्यायनी व्रत करें। अभी हम लोग परसों कल वर्षा आएगी, सब लोग वृंदावन जाना चाहेंगे, मथुरा जाना चाहेंगे, लौट जाएंगे, और 7 तारीख को यहीं से बस जाएगी दिल्ली के लिए। 8 तारीख को जाएगी, जो जाना चाहेंगे ब्रह्मचारी विशेष करके जिनको नवद्वीप जाना है उन सबको इसमें से जाना है, उनका नाम कल हम लोगों ने पाठ किया, वो सब लोग जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी डोंट वांट टू गो एंड टू पार्टिसिपेट इन नवदीप परिक्रमा पार्टी इन बंगाल, दे कैन गो इवन वेस्टर्न डिवोटीज ऑल्सो, बंगाली विल गो, सो मेनी अदर्स विल गो, वेस्टर्न डिवोटीज मे गो देयर टू प्रीच फॉर 3-4 months and then now अभी मधु और दामोदर जी की पार्टी का राष्ट्र होगा, इसके बाद में और बेंगलोर वाले प्रस्तुत हो जाएगा अपना कीर्तन के।
Therefore, what is uppercut? Uppercut means that which is against or displeasing or dispels, and rather means to please. Therefore, what destroys our inclination to please Hari Guru Vaishnava, that is called uppercut. Therefore, we are chanting, but our heart is not melting, nor the 8 symptoms of ecstasy appearing on our bodies. Then if we are not committing offense in this life, it must be that in our previous lives, knowingly or unknowingly, we have committed some apparad, some offense. Therefore, we should pray to Hari Guru and Vaishnav to dispel our offenses and to give us the treasure of the pure name. This human life is very rarely achieved and it can leave us at any time. Therefore, we should give up all our material desires. Therefore, what comes to us according to our previous karma, we should accept only that which is necessary to maintain our lives. And always remember that our goal is Hari Bhajan. Therefore, we should make our human life successful first and then we can help others. Therefore, in this month, we have heard so many beautiful instructions. We have visited so many great holy places, high places. A great chance has been offered to us that in this very life we can perfect our bhajan. Therefore, tomorrow our Urja Vrat, our Kartik Vrat is finished. But that does not mean that we throw away our bhajan. We should consider this to be like an electric charge, to charge our batteries. But any of the 11 months of the year we can do Dhammadarasti. And we can continue our prayers that we have been chanting this last month. And the things that we have been not taking for the last 4 months, like tomatoes, etc. Then tomorrow we'll offer them to Thakurji. And after giving serving to the Vaishnavas, then we will take and complete our fast. And fire sacrifice under the guidance of Mahaprabhu. And tomorrow morning class will be at normal time. Gurudev will come out at 5:30.
Hare Krishna. Jara Tirtha Maharaj Sange Prachare Jaben, Tader Namavar Announce Korchi. Shri Tirtha Maharaj, Radhesham Prabhu Bangalore, Pratyumna Prabhu, Rajanath Prabhu, Gaurav Brahmachari, Kishore Krishna Prabhu, Kunja Bihari Prabhu, Patit Pavan Prabhu, Madhavananda Prabhu, Prahlad Prabhu, Braj Mohan from France, Madan Prabhu, Dija Krishna Prabhu, Nikunja Prabhu, Sivananda Prabhu, Donai Govardhan Morse, Tamal Krishna Prabhu, Tapan Brahmachari, Ram Kesav Brahmachari, Vrindavan, Kaviraj Krishna, Braj Manohar, both are Asiyan from Mathura. जो लोग तीर्थों के साथ जाएंगे मैं पुनः उनका नाम अनाउंस कर रहा हूँ और तीर्थों के साथ दिल्ली भी आएंगे दिल्ली से प्रस्थान करेंगे आप लोग अपने विस्तार आदि सब ले लेंगे सिपा तीर्थों महाराज राजस्थान ब्रह्मचारी बेंगलोर